हेलो, मैं हूँ आपके साथ कहानी वाली कुड़ी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ अमृता प्रीतम की लिखी हुई कहानी लटिया की छोकरी। प्रस्तुत है लटिया की छोकरी का पहला भाग। पार्वती ने जब डोली में से पैर उतारा, सबसे पहले उसके ससुर ने रुपयों की थैली में उसका हाथ डलवाया, फिर उसकी सास ने सोने की कंठी उसे मुंह दिखाई में दी, फिर उसके देवर ने उसे सफेद मोतियों की अंगूठी घूंघट उठाई में दी, और फिर बाकी सगे संबंधियों ने अपने अपने संबंध के अनुसार पांच पांच या दो दो रुपए उसके मुट्ठी में दिए। देशराज की बारी आधी रात के करीब आनी थी। सुहाग की सेज पर बैठी पार्वती सोच रही थी कि उसके ससुर ने उसका घर में स्वागत कर उसे बहू से बेटी बना लिया था। उसकी सास ने उसका मुंह देखते हुए उसे घर का सिंगार कहा था। उसके देवर ने उसके रूप को सराहते हुए उसे फूलों जैसी भाभी कहा था, और सगे संबंधियों ने उसे चंदन की डाली कह कह कर प्रशंसा की थी। और वो सोच रही थी कि अगर देशराज उसका मुंह देखकर उसे अपने मन में उतार लेगा तभी ये सब कुछ सार्थक होगा, नहीं तो सब कुछ निष्फल चला जाएगा। देशराज ने बड़ी कोमलता से पार्वती का घूंघट उठाया और नजर भरकर उसके मुंह की ओर निहारते हुए धीरे से कहने लगा, पारो। जिस कोमल आवाज में देशराज ने पार्वती को पारो बना दिया था, पार्वती का तन मन पूर गया। उसने पलकें झपकाकर देशराज के मुंह की ओर देखा। देशराज के मुंह पर एक गहरी तसल्ली थी। उसने कोट की जेब में से एक तस्वीर निकाली और पारो की झोली में डालकर कहने लगा, तुम्हारी मुंह दिखाई। पारो तस्वीर की ओर देखती की देखती रह गई। ये एक भरपूर जवान लड़की की तस्वीर थी। लड़की के बदन पर एक छोटी सी चोली थी, लांग वाली धोती बंधी थी और बालों में फूलों के गुच्छे टंगे थे। लड़की के मुख पर रूप का ज्वार था और ये रूप जंगली फूलों जैसा था। पारो को क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कने से रह गया हो। दूसरे क्षण देशराज ने पारो को उसके दिल की धड़कन लौटा दी। कहने लगा, ये चारों की तस्वीर है। मैं सोचता था अगर तुम्हारा मुख उतना ही सुंदर हुआ जितना मेरे मन में बसा हुआ है तो मैं चारों की तस्वीर तुम्हें मुंह दिखाई में दूंगा। और देशराज ने पार्वती को अपनी पारो बनाकर चारों की कहानी इस तरह सुनाई। एक बार हमारा हाथ बहुत तंग हो गया था। पिताजी किसी के साथ साझेदारी कर बैठे थे। अधिक विश्वास का बदला हमें ये मिला था कि घर का सारा छाप छल्ला बेचकर बाजार का कर्ज चुकाया था। लेना डूब गया था और हम रोटी के भी मोहताज थे। मेरे ताऊ के बेटे बोधराज और कर्मचंद पिछले कुछ सालों से मध्य प्रदेश में रहते थे। सुना था ठेकेदारी करते हैं। वे कुछ सालों में ही बड़ी आसामी बन गए थे। उन्होंने मुझे लिख भेजा कि मैं भी अगर थोड़ा बहुत पैसा लेकर उनके पास पहुंच जाऊं तो कुछ ही दिनों में घर की हालत सुधर सकती है। मैं सोनीपत छोड़कर बिलासपुर चला गया। बोधराज और कर्मचंद जिस ढंग से लखपति बने थे वो ढंग देखकर मेरा दिल कांप गया। वे 20 रुपए सैकड़ा ब्याज लेकर अपना रुपया ब्याज पर देते थे। दांव लगे तो 25 रुपए भी लगा लेते थे। आसपास के गांव में गरीबों का जीना भी गिरवी पड़ा हुआ था और मरना भी। मैं साहूकारी का काम न कर पाया, लेकिन पास पड़ोस के गांव में जाकर काम का अवसर देखते हुए मैंने बिलासपुर से 19 मील दूर अकलतरे में साबुन का कारखाना खोल दिया। जो गांव रेलवे लाइन के पास पड़ते हैं वहाँ के आदिवासी चाहे अपनी जंगल की आबादी को खो बैठे हैं, फिर भी नाच गाने की आज़ादी उनकी हड्डियों में रमी हुई है। होली के दिनों में मैंने किसी से पूछा, अगर मैं लोगों के नाच गाने की महफिल में चला जाऊं तो किसी को एतराज तो नहीं? मालूम हुआ कि किसी को एतराज नहीं था। मैं एक सांझ को गांव के उस इकट्ठे में चला गया जहां मृदंग और बांसुरी बज रही थी। स्त्रियां और पुरुष कांसे की कटोरियों में ताड़ी पी रहे थे और गा रहे थे। लाल पीले रंग में डूबी हुई औरतों ने पूरे हाथों में कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी, पैरों में चांदी की नाग मोरियां और नाक में मोटी मोटी तीलियां। गेंदे के फूल उनके बालों में बंधे हुए थे। उनका गीत मुझे आज तक याद है। मोर अंगना में आयो रसिया, मोर अंगना में आयो रसिया, का करूं दाई एक न माने, का करूं दाई एक न माने, चले ना मोरे बसिया, मोर अंगना में आयो रसिया, मोर अंगना में आयो रसिया। ये जवान लड़की गजब की खूबसूरत थी। उसने सारे इकट्ठ की फेरी ली और बाहें लटकाकर एक लंबा सा गीत गाया। उस गीत की एक ही पंक्ति मुझे याद रह गई है, लटपट पाग से लपेट मन ले गयो। हर बार जब वो ये पंक्ति बोलती थी, सारे इकट्ठ की स्त्रियां उसके साथ मिलकर इस पंक्ति को गुंजा देती थीं। उसने बड़ा रंग बांधा, पर मृदंग वाला उससे भी अधिक मस्ती में था। उसने बड़ी लटक से गीत गाया, तोला देख रयो री, तोला देख रयो री, लटिया की छोरी मोरे जिया में भाग गई, लटिया की छोरी मोरे जिया में भाग गई, नागन से छोरी मोरे हिया में छा गई, जहिरा चढ़ गयो रे तोला देख रयो रे, जहिरा चढ़ गयो रे तोला देख रयो रे। लोग ये गीत गा रहे थे और साथ में गुटक रहे थे। मैंने देखा कि मृदंग वाला भी और कई दूसरे भी बार बार जिस ओर देख रहे थे, वहां 15-16 साल की एक लड़की खड़ी थी जिसने लड़कों की तरह कमर में एक अंगूछा बांधा हुआ था और गले में एक चारखाने कुर्ती पहनी हुई थी। उस और औरतें अपने बाल खूब लंबे रखती हैं, पर उस लड़की ने लड़कों की तरह अपने बाल काटे हुए थे और गाने वाली औरतों से परे खड़ी बीड़ी पी रही थी। मैंने पिछले दिनों गांव की बोली सीख ली थी। मेरे पास साबुन की फेरी लगाने वाला चेटू काका खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि यह लड़की कौन थी। चेटू काका ने बड़ी ताकीद से मुझे बताया,
अरे छोकरी चारू, एक बड़ी चंटे, एकर नजीक झंझावे, थोड़ कुन कोनो इला छेड़ी से कि जूती एकर हाथ में आए से, ए जोने ननकी मृदंग बजावते, एकर मौत आए, ऐसन मोला दिखते कि ए चारू ला प्यार करते।
और चेटू काका ने मुझे ये भी बताया कि ये चारू लटिया पारे में रहते थे, इसलिए वो मृदंग वाला ननकी अपने गीत में कह रहा था, लटिया की छोरी मोरे जिया में भाग गई। मैं कितनी देर चारू की ओर देखता रहा। मैं हैरान था कि चारू ने जानबूझकर अपना रूप क्यों बिगाड़ा हुआ था। वो अगर दूसरी लड़कियों की तरह रंगीली धोती बांधती, बाहों में कांच के गजरे पहनती, आंखों में काजल डालती और लंबे बालों का जूड़ा बनाकर उसमें फूल टांकती तो वो बहुत सुंदर लग सकती थी, पर ग्वालों जैसी वो लड़की उस समय बिल्कुल लड़की नहीं लग रही थी। सिर्फ उसके मुख पर उसकी आंखें ऐसी थीं जो उसके रूप की चुगली खा रही थीं, नहीं तो उसकी ओर दूसरी बार देखने का भी ख्याल ना आता। दूसरे दिन चेटू काका ने मुझे फिर बताया कि वो लटिया पारे की छोकरी बड़ी खतरनाक थी। 8 आने महीना पर एक खपरेल किराए पर लेकर अकेली रहती थी। छुटपन में माँ डूब कर मर गई थी, बाप पागल हो गया था और अब वो शेरनी की तरह किसी से भी नहीं डरती थी। बीड़ियां फूंकती थी, जुआ खेलती थी और ठेके पर जाकर पौवा शराब एक ही बार में चढ़ा लेती थी। कभी वो ओखली में लोगों का धान कूटकर चार पांच आने रोज कमा लेती थी और कभी वो स्टेशन पर जाकर एक एक आने में लोगों का सामान ढो देती थी। और चेटू काका ने मुझे चेताया कि कभी राह जाते मैं उसे बुला ना लूं। वो किसी की इज्जत नहीं देखती थी और दूसरे का हाथ छटक कर पांव में से जूते निकाल लेती थी। ये सब कुछ बड़ा अजीब था। मैं अक्सर बैठा बैठा चारों के बारे में सोचता रहता, कईयों से पूछताछ भी करता। सभी चेटू काका की बात दोहराते थे। वैसे होली के दिनों में जिस दिन ननकी ने वो गीत गाया, चारू का नाम सारे गांव में लटिया की छोकरी पड़ गया था। एक दिन चारू बीड़ी पीती हुई मेरे कारखाने में चली आई और आते ही मुझसे कहने लगी, ठाकुर बोला नौकर रख देगा, कहा काम जाना तस, जौन काम ते देवे। कारखाना में तो कतको काम है, पानी भरवे, साबुन कटाई करवे, पेटी उठावे, सब काम करे हो। छो आना रोजी मिली, मुला मंजूर है। चारू मेरे कारखाने में छह आने रोज पर मजदूरी करने लगे। चारू को आए अभी एक महीना भी नहीं हुआ था कि ननकी भी मेरे कारखाने में नौकरी करने आ गया। मुझे ननकी के इश्क का पता था, इसलिए मैंने उसे 12 आने रोज पर अपने कारखाने में रख लिया। उन दिनों औरत को 6 आने रोज और मर्द को 12 आने रोज मिलते थे। ननकी का इश्क सारे गांव में मशहूर था। मैंने कुछ दिनों बाद ननकी को बुलाकर कहा, ननकी तोर प्यार की बात तो खूब फैल गए, अब तो चारू से ब्याह कर ले। एस साली तो मोर हाथ ही नहीं आवे, ननकी ने मुंह लटका कर मुझे जवाब दिया। तो फिर तै एकर ख्याल न छोड़ दे, मैंने ननकी के मन को देखने के लिए फिर कहा। का करूं ठाकुर, एकर प्यार के जहर तो मोर रुया रुया में समा गए। ननकी ने जिस समय ये उत्तर दिया, ननकी का मुख देखते ही बनता था। तोर गांव में तो एकर ले बढ़िया बढ़िया पड़िए, मैंने ननकी से हंसकर कहा। पर ननकी का इश्क पक्का था, बड़ी गंभीरता से कहने लगा, पता नहीं ठाकुर, इस साली लटिया की छोकरी मोर ऊपर का जादू कर दे से। कई महीने बीत गए, ननकी उसी तरह सब्र से इश्क करता रहा और चारू उसी तरह ननकी से भी और गांव के और मर्दों से भी तनी रही। एक दिन ननकी घबराया हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, ठाकुर ये जौन नया ठेकेदार आए से ए मोला ठीक न दिखते, ऐसे न लागते कि कोई दिन ए कोई गड़बड़ जरूर करे। क्यों ननकी, क्या बात है, मैंने उससे पूछा। कल सांझ के चारू जब तालाब से लौट आ रही तो ठेकेदार उठकर हाथ ला धर ले से, ननकी ने मुझे बताया। फिर मैंने कुछ चिंतित होकर पूछा, फिर का? चारू गुस्सा गई और खूब गाली दे से उत्तान के एक थप्पड़ मारी से। ननकी ने जब मुझे ये बताया, चिंता तो मुझे भी हुई, पर मैंने ननकी को ढारस देकर भेज दिया। बात ये थी कि गांव में शराब बंदी हो रही थी। पहले लोग आम पीते थे, अब चोरी से पीनी पड़ती थी। लोग पुलिस वालों पर खींचे हुए थे और पुलिस लोगों पर। इन दिनों बात बात पर पुलिस वालों और लोगों में तन जाती थी। मैंने कभी चारू से पूछा नहीं था, पर मैंने गांव में अफवाह सुनी थी कि चारू हफ्ते में एक आध बार बिलासपुर से शराब की बोतल छिपाकर ले आती थी और यहाँ आकर बेच देती थी। बिलासपुर में शराबबंदी नहीं थी। मेरा डर सच निकला। एक दिन संध्या के समय गांव का नया इंस्पेक्टर ओम प्रकाश दो सिपाहियों को लेकर मेरी ओर आया, क्योंकि उसे लटिया पारे जाकर चारू की खबरेल की तलाशी लेनी थी और मुझे साथ ले जाकर सरकारी गवाह बनाना था। ये था अमृता प्रीतम की लिखी हुई कहानी लटिया की छोकरी का पहला भाग। वाचन स्वर सुखनंदन बिद्रा का था।